दूसरा इतिहास अध्याय सात पद एक। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। ये जंगल के मंडप के तंबू के समर्पित करने को दोहराना है जहां परमेश्वर की आग ने उतरकर वेदी की अग्नि को जलाकर बलि को भस्म किया था और मंडप परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। और यहां पर भी वही बात हुई कि परमेश्वर का तेज भवन में भर गया। अध्याय सात पद दो से लेकर पांच तक। और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इसराइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यों पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। कितना स्वादिष्ट भोजन को उन्होंने खाया। अध्याय सात पद छह और सात। और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेविय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरियां बजाते रहे और सब इसराइली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहां चढ़ाई क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी, इसलिए उन्होंने आंगन में बलि के लिए स्थान बनाया। अध्याय सात पद आठ से लेकर दस तक। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इसराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी के प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे अपने अपने डेरे को जाएं और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इसराइल पर की थी आनंदित थे। परमेश्वर की संगति से वापस लौटने का सही तरीका यही है। परमेश्वर की भलाई के कारण हर्ष और उल्लास से भरे हुए लौटना। अध्याय सात पद 11 और 12। यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। ये दर्शन परमेश्वर ने उसे उत्सव पूरा होने और सब बातें समाप्त होने के बाद दिया था। अध्याय सात पद 13 और 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि तेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सुलेमान की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी है। सुलेमान ने इन विपत्तियों को पहले ही देख लिया था जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने पर इस देश पर आने वाली थी। इस कारण उसने परमेश्वर से निवेदन किया था और यदि वे पछताएं और फिर कर प्रार्थना करें तो अपने स्वर्गीय स्थानों से सुन लेना। और परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर दिया, यदि ऐसा हो और तेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये मेरा विश्वास है कि जो लोग उसके नाम से जाने जाते हैं उनके लिए ये पाठ सबसे उचित है। परंतु हम सच्ची मसीहत से कितनी दूर आ गए हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर से कितनी दूर निकल आए हैं। हम महामारी देख रहे हैं, परमेश्वर का न्याय जैसे सुलेमान देख पाया था। परमेश्वर के लोगों के लिए यही समय है कि वे दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। तब परमेश्वर सुनेगा, क्षमा करेगा और देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। अध्याय 7 पद 15 से लेकर 22 तक। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। और यदि तू अपना पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरा पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इसराइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराए देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यहां परमेश्वर सुलेमान को पहले चेतावनी देता है, फिर एक प्रतिज्ञा। सुलेमान, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे तो जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी मैं उसे पूरा करूंगा और तू राजगद्दी पर स्थिर रहेगा। परंतु यदि सुलेमान तू फिरे तो मैं भी तुझसे फिर जाऊंगा और तुझे जड़ से उखाड़ूंगा और विपत्तियां तुझ पर पड़ेगी। ये सुंदर भवन जो तूने बनाया है उजड़ जाएगा और लोग कहेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यहां उजाड़ करा दिया, और वे कहेंगे क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। बहुत बार जब परमेश्वर हमें आने वाले खतरे से सावधान करता है तब हम लापरवाही से कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है प्रभु, मुझे वहां कोई परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर तू चिंता मत कर, ऐसे हालातों में भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। यहां प्रभु सुलेमान से स्पष्ट कह रहा है कि वो उसे छोड़ देगा। मैंने परमेश्वर की हर चेतावनी पर ध्यान देना सीखा है क्योंकि मैंने पाया है कि मैं कभी गिरा नहीं, परंतु तभी गिरा जब उसने पहले से मुझे सचेत नहीं किया। बहुत बार जब चेतावनी आई तो मैंने सोचा कि ये इतनी गंभीर नहीं है, मैंने सोचा इस विषय पर तो मैं कभी न चूकूंगा या फसाया जाऊंगा, और परिणाम ये हुआ कि मैं फंस ही गया। वचन में ये एक ध्यान देने योग्य शिक्षा है कि परमेश्वर लोगों को उस हर बात में सचेत करता है जो उनके लिए बाद में ठोकर का कारण बनती है, और ऐसा ही होता है। यहां सुलेमान अभी तक सचेत है क्योंकि उसने परमेश्वर की शक्ति का महान अनुभव पाया है। परमेश्वर की आग ने वेदी पर बलि को भस्म कर दिया, परमेश्वर के तेज से भवन भर गया, परमेश्वर का बादल और बहुत से अलौकिक अनुभव। परमेश्वर कहता है, सुलेमान मुझे छोड़ मत देना। मुझे निश्चय है सुलेमान ने अपने मन में कहा होगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं किसी दूसरे देवता की उपासना कभी न करूंगा, तेरे समान और कोई ईश्वर नहीं है जो वाचा बांधता और दया करता है, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। अंत में सुलेमान को क्या हो गया? उसने परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवताओं की उपासना और सेवा करना आरंभ कर दी। ये बड़ी दुखदाई बात है। जिस चूक के लिए परमेश्वर ने उसे सावधान किया था, वही चूक उससे हुई, और ये अधिकतर सत्य होता है। इसलिए हमें उसकी हर एक चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।